बैठे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब प्रभु की कृपा से भले चंगे हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी प्रभु के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, सबसे पहले हम पिछले अध्ययन के बारे में थोड़ा सा देख लें। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि यीशु हेरोदियों, सद्दूकियों और फरीसियों को उत्तर देते हैं और यीशु फरीसियों के सामने एक प्रश्न रखते हैं। अध्याय 23 में हमने देखा था कि यीशु शास्त्री और फरीसियों के विरुद्ध चेतावनी देते हैं और सदूकी और फरीसियों के विरुद्ध धिक्कार की घोषणा करते हैं। इस तरह से हम अध्याय 23 के 22 पद तक का अध्ययन कर चुके थे। आज हम उसके आगे अपने अध्ययन को प्रारंभ करेंगे और हमारे प्रभु के कठोर भत्सना को सुनेंगे। तो आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसके 23 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा है, हे पाखंडी शास्त्रियों, फरीसियों, तुम पर हाय! तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात न्याय, दया और विश्वास की अपेक्षा करते हो। परंतु चाहिए था कि इन बातों को करते हुए अन्य बातों की भी उपेक्षा न करते। मित्र, वे अपने छोटे पौधे का भी दशमांश देने में बहुत सतर्क थे जो मसाला उत्पन्न करते थे, जैसे सौंफ, जीरा और पुदीना। उदाहरण स्वरूप देखें कि जब मैं छोटा था तो हमारे घर के सामने हमने धनिया लगाया था और माँ हमेशा उसमें पानी डालने को कहती थी। मित्रों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनमें से एक धार्मिक अगुआ इस छोटे धनिया या सौंफ के पौधे का क्षेत्र नाप कर उसमें से आने वाले का भी दशमांश लेकर प्रभु के लिए लाने को कहते थे। ओह, ये लोग इन छोटी सी छोटी बातों के लिए बहुत कठोर थे। परंतु हमारे प्रभु कहते हैं कि तुम व्यवस्था की बड़ी और भारी बातों के बारे में भूल गए हो, और वे भारी या बड़ी बातें इन्हीं मसीह के पास ला सकती थी। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय और उसके 24 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। मित्रों, क्या आप सोचते हैं कि यह पद हास्यप्रद है? मैं सोचता हूँ, क्योंकि यदि मैं वहाँ यीशु के साथ होता जब वे कह रहे थे तो अवश्य मैं हंसता। यह सच है कि इसके लिए मुझे एक सदूकी या फरीसी बनना पड़ता। प्रभु ने इसे गंभीरता में कहा, लेकिन मुझे भरोसा है कि उस भीड़ में कई लोग हंसे होंगे, विशेष करके वे लोग जो पुराने धार्मिक शासकों को जानते थे। मित्रों, बहुत से लोग हैं जो छोटी या थोड़ी चीज से भी बहुत कमा लेते हैं। मुझे किसी ने बताया कि एक प्रिय महिला थी जो लिपस्टिक लगाने के बारे में विवाद करती थी। उसने सोचा कि यह बुरा है, फिर भी उसके पास एक बुराई करने वाली एक जीभ थी। उसने नहीं सोचा कि वह बुरा है, परंतु उसके लिए लिपस्टिक भयानक थी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जीभ के आखिर में चुगली का रंग भरा है, जिसे दूसरों को काला करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह तो होंठ पर लिपस्टिक लगाने से भी कहीं और बुरा है। यह आश्चर्य की बात है कि लोग कैसे बड़ी बातें बर्दाश्त करते हैं, परंतु छोटी छोटी बातों को पहाड़ बना देते हैं, जैसे गुड़ का खाना और गुले गुले का परहेज करना। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय और उसके 25 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम कटोरे और थाली को बाहर से तो मांजते हो, परंतु भीतर से वे हर प्रकार की लूट और असंयम से भरे हुए हैं। मित्रों, यह पांचवा धिक्कार फरीसियों के द्वारा उनके बाहरी बातों को महत्व देने के चित्र को प्रदर्शित करता है। यह तस्वीर आज अधिकतर कलीसियाओं की है, जो कटोरा और कठौती को बाहर से धोते और साफ करते और चमकाने में व्यस्त हैं, और वे सभी विधियों का पालन करते हैं, धर्मानुष्ठान से होकर जाते हैं, वे बाहर में बहुत ही अच्छे और धर्मी की तरह बात करते हैं, परंतु अंदर जो पाप है उसके साथ कुछ भी नहीं करते हैं। बहुत सी बातों में पाप शब्द को पसंद नहीं करते हैं, परंतु उनके सभी बाहरी धर्मानुष्ठान या विधियां उनके अंदर की दुष्टता को साफ नहीं कर सकती है। फरीसियों ने वास्तविकता के लिए धर्म विधि, विश्वास के लिए औपचारिकता और परमेश्वर के लिए उपासना पद्धति को प्रस्थापित किया है। मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज, जिससे कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाएं। मित्रों, उसे गलत न समझें। वह यह नहीं कह रहे हैं कि बाहरी भाग साफ नहीं करना चाहिए, परंतु आप एक गलत प्रभाव देते हैं जब यह अंदर से ही गंदा होता है और बाहर से नहीं। साफ करने का आरंभ अंदर से ही करना चाहिए। मत्ती सुसमाचार उसके 23 अध्याय और उसके 27 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम चूने से पुती हुई कब्रों के समान हो, जो बाहर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सारी अशुद्धता से भरी पड़ी है। मित्रों, मेरे लिए यह सबसे अधिक भयभीत करने वाला अलंकार है जिसे हमारे प्रभु प्रयोग में ला रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि कटोरा और कठौती बाहर से साफ है और अंदर से गंदे हैं। यह हमारे दिनों में अधिकतर कलीसिया की तस्वीर है, परंतु मैं डरता हूं कि यह कब्र की उपमा औसतन कलीसिया में जाने वाले की तस्वीर है, जो बाहर से बहुत सुंदर लगते हैं, परंतु भीतर से वे पाप और अपराध से भरे हुए हैं, अर्थात मरे हुए हैं। उनके पास धार्मिकता का एक रूप है, परंतु वे इसकी सामर्थ का इनकार करते हैं कि यह उन्हें मसीह में एक नई सृष्टि बना सकता है। मेरे प्रिय मित्रों, जब तक यह नहीं हो सकता है, आपकी कलीसिया की सदस्यता अमान्य और व्यर्थ है। यह कुछ नहीं बल्कि पाखंड है। जब मैंने एक बार पढ़ा कि संयुक्त राज्य की आधी जनसंख्या कलीसिया की सदस्य है, मैं आश्चर्य करता हूं कि तब क्यों सामूहिक स्थानों में 99% लोगों को शराब पीते देखे जाते हैं, जो अपवित्रता का उपयोग करके गंदी कहानियों को कहते हैं। हमारे पास बहुत से संगमरमर की कब्रें हैं जो हमारे चारों ओर चलती फिरती हैं, जो आत्मिक जीवित शव है और जो पापों और अपराधों में मरे हुए हैं। मित्रों, हम मत्ती सुसमाचार उसके 23 अध्याय के 28 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, इसी प्रकार तुम भी बाहर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। ओह, वह कैसे इन धार्मिक अगुओं की भर्सना कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा उनकी ही भर्सना करना चाहिए। मेरे प्रिय मित्र, यदि आपके समूह में बाइबल की शिक्षा देने वाली कलीसिया है और प्रचारक बाइबल के वचनों पर विश्वास करता है और वह इसे सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो परमेश्वर के लिए आप उनके साथ खड़े हो जाइए, अर्थात उसे साथ दीजिए। उसे आपकी आवश्यकता है और आपको उसकी आवश्यकता है। ओह, हमें उन व्यक्तियों की कितनी आवश्यकता है जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते और उसके अनुसार जीते हैं। हम मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय उसके 29 से 32 पद में आगे पढ़ते हैं, हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम नबियों की कब्रें तो बनाते और धर्मियों के स्मारक सजाते हो, और कहते हो, यदि हम अपने पूर्वजों के समय में होते तो नबियों की हत्या में साझीदारी न होते। फलतः तुम अपने विरुद्ध साक्षी देते हो कि नबियों की हत्यारों की संतान हो, अतः तुम अपने पूर्वजों के पाप का घड़ा भर दो। मित्रों, आज हमारे दिनों में हम उसी काम को कर रहे हैं। परमेश्वर के बड़े भक्तगण, प्रवक्ता, प्रचारक, सेवक अपनी पीढ़ी के द्वारा ही उपहास और धिकारे जाते थे, परंतु आज वे सम्मानित किए जाते हैं। यह बात प्रभु के दास स्पर्जन, मूडी, टोरे और बहुत अन्य लोगों के साथ सच थी। हमारे प्रभु मनुष्य के निश्चित स्वभाव को जानते थे और यह बदला नहीं है। तुम भविष्यवक्ताओं के स्मरणोत्सव बनाने के लिए कब्रें बनाते हो, उनके जाने के बाद, और धर्मियों के स्मारक को सजाते हो, अतः तुम अपने पूर्वजों का घड़ा भर दो। ये वही धार्मिक अगुए हैं जो पहले भविष्यवक्ताओं का सम्मान कर रहे थे। वे बहुत जल्दी रोमी साम्राज्य पर दबाव डालेंगे कि परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाएं, जो उनसे बातें कर रहा था। अब यहाँ पर कुछ और है जो आपकी आत्मा को विवरण करेगा। मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय उसके 33 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, हे सांपों, हे करेंतो के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? मित्रों, क्या आप इससे बढ़कर और कोई कठोर भाषा की कल्पना कर सकते हैं? उन्हें सांपों के बच्चों कहने का क्या मतलब था? उसके कहने का मतलब था कि वे सांप की संतान हैं। यह मनुष्य के उस विश्वव्यापी भाईचारे के घृणित सिद्धांत और परमेश्वर के विश्वव्यापी पितृत्व के सिद्धांत को विध्वंस कर रहे हैं। यदि आपने यीशु को अस्वीकार किया है तो वह आपकी मांग नहीं करते हैं। परमेश्वर की संतान बनने के लिए केवल एक ही मार्ग है कि आप मसीह को स्वीकार करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मित्रों, मती के इन पदों में प्रभु कठोरता से बातें कर रहे हैं। वह तो चाय का कप दे रहे हैं। वह बहुत से उदारवादी विचार के लोगों के लिए जो वर्तमान समय में है थोड़ी कड़क है, परंतु यीशु मसीह जिसे प्यार करते हैं वो ऐसा प्यार नहीं है। वह इस पृथ्वी पर उनके पापों के लिए मरने आए क्योंकि वह आपसे प्रेम करते थे, परंतु यदि आप उसे अस्वीकार करते हैं तो वह आपका न्यायी बनता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय और 34 और 35 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, इसलिए देखो मैं तुम्हारे लिए नबियों और ज्ञानियों और शास्त्रियों को भेज रहा हूं, तुम उनमें से कुछ की हत्या करोगे और कुछ को क्रूस पर चढ़ाओगे, फिर कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे और नगर नगर सताते फिरोगे कि जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वह तुम्हारे सिर पर पड़े, अर्थात धर्मी हाबिल से लेकर विरकियाह के पुत्र जकर्याह तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच मार डाला था। मित्रों, स्पष्ट रूप से जकर्याह का मार डाला जाना एक घटना थी जो कुछ समय पहले घटी थी। हमारे प्रभु हाबिल की हत्या से आरंभ करते हैं और वर्तमान समय तक लेकर आते हैं। वह इसे बहुत स्पष्ट करते हैं, धर्मियों को नाश करने के लिए परमेश्वर इसराइल का न्याय करेंगे। वह निश्चित रूप से हमारे वर्तमान दर्शन शास्त्र को खंडित कर रहे हैं कि अंततः सब लोग बचाए जाएंगे। वह कहते हैं कि वे नहीं बचाए जाएंगे। हम मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 36 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये सब बातें इस पीढ़ी के सिर पर पड़ेंगी। मित्रों, वह यरूशलेम की 70 ईस्वी सन में विनाश की भविष्यवाणी करते हैं। वह आगे क्या करते हैं? जिसने यह कठोर धमकी दी वह अब यरूशलेम के ऊपर रोएंगे। यीशु यरूशलेम के ऊपर रोते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 37 और 38 पद में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू नबियों को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे जाते हैं उनका पथराव करता है। मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है वैसे ही मैं भी तेरे बच्चों को इकट्ठा करूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। मित्रों, यरूशलेम ने उसके प्रवेश को, जिसे हम विजय प्रवेश कहते हैं, स्वीकार नहीं किया और उसने यरूशलेम को स्वीकार नहीं किया, परंतु अब वह इस शहर के लिए रोते हैं। जी हाँ, उसने उनकी भर्त्सना की परंतु वह उनसे प्रेम करते हैं और उस न्याय को जानते हुए जो उनके ऊपर आने वाला है वह रोते हैं। प्रभु के दास डीएल मूडी के दिनों में एक वक्तव्य दिया गया था कि केवल वही एक व्यक्ति जीवित था जो नरक के विषय विचार या प्रचार कर सकता था, क्योंकि उसने इसे बड़े तरस के साथ किया। और निश्चित रूप से हमारे प्रभु ने एक टूटे हुए हृदय के साथ इन दुखों को उच्चारित किया। आपको याद होगा कि कुछ लोगों ने उसे यर्मिया समझा, यद्यपि यर्मिया ने भी पुराने नियम में कठोर भत्सना की थी और वह इस पर रोया। मेरा यह मानना है कि आज हमें निंदा नहीं करनी चाहिए जब तक कि हम व्यक्तिगत रीति से उनके द्वारा प्रेरित नहीं किए जाते हैं। मित्रों, हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय और उसके 39 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक या न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। मित्रों, न केवल धार्मिक अगुए सदमा में थे परंतु उसके शिष्य भी सदमे में थे। यह उन्हें घटना का एक नया मोड़ लगा। वे उससे उम्मीद कर रहे थे कि यरूशलेम की राजधानी बनाकर वह राज्य स्थापित करेगा, परंतु अब वह कहता है कि उनका घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा और वे उसे दोबारा नहीं देखेंगे जब तक कि वे न कहें कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। आप यहां पर देखें, यद्यपि वह इस समय अपने क्रूस के मार्ग पर है, फिर भी वह उन्हें सांत्वना देता है कि वह फिर आएगा और वह उसका विजयपूर्ण प्रवेश होगा। मित्रों, स्पष्ट रूप से राज्य को आगे के लिए स्थगित किया जा रहा है। बहुत से लोग हैं जो इस शिक्षा का विरोध करते हैं, परंतु ऐसा करने के लिए उन्हें हमारे प्रभु यीशु की भाषा का विरोध करना पड़ेगा। वह अपने शिष्यों से कहते हैं कि वह अपना राज्य इस पृथ्वी पर इस समय स्थापित नहीं करेंगे, परंतु वह दूसरी बार इसे स्थापित करने के लिए आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य स्थगित हो गया है कि नहीं? इस स्थगित का प्रस्ताव व विचार सुनकर शिष्य दुखी हो गए, इसलिए वे उसके पास में तीन प्रश्नों के साथ में आते हैं, जिसे हम अगले अध्याय में देखेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर अध्याय 23 समाप्त हुआ और हम अध्याय 24 में अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि शिष्यों ने यीशु से तीन प्रश्न पूछे। वह दो के बारे में उत्तर देते हैं, जगत के अंत का चिन्ह और उसके आने का चिन्ह। मत्तयी सुसमाचार के 24 और 25 अध्याय जैतून के उपदेश के नाम से जाना जाता है। इस सुसमाचार में अंतिम तीन बड़े उपदेशों को संगठित किया गया है। वे बड़े उपदेश कहे जाते हैं उसके विस्तार या अंश और उनके उद्देश्य के कारण से। आगे हम देखते हैं कि यीशु यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी करते हैं। मित्रों, अब हमारे प्रभु ने धार्मिक शासकों की भर्त्सना की है। उसने अपनी पीठ यरूशलेम की ओर कर दी और उनसे कहा कि उनका घर अर्थात मंदिर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। हम मत्तयी सुसमाचार 24 अध्याय और उसके एक पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, जब यीशु मंदिर से निकलकर बाहर जा रहा था तो उसके चेले मंदिर के भवन को दिखाने उसके पास आए। प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि उसका राज्य स्थगित होगा और मंदिर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। मंदिर कई इमारतों से बना है। इस मंदिर को हेरोद ने बनवाया था और तब भी कार्य प्रगति पर था। यह सफेद संगमरमर का बना था और इस समय तक यह बहुत फैल चुका था और बहुत सुंदर था। शिष्य यीशु की कथन से परेशान थे कि यह उजाड़ छोड़ दिया जाएगा, इसलिए शिष्य यीशु के पास आते हैं और मंदिर की चारों ओर उसे दिखाना चाहते हैं। मत्तयी सुसमाचार 24 अध्याय और उसके दो पद में इस प्रकार से लिखा है, तब उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ पर एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर भी न रहेगा जो ढाया न जाएगा। क्या तुम यह सब नहीं देखते? शिष्यों ने सोचा कि वे देख चुके हैं और उन्होंने उससे कहा कि एक बार देखे। तब वह उनसे कहता है, क्या तुम वास्तव में इसे देखते हो? हमारे समकालीन समाज में यह हमारे लिए एक अच्छा प्रश्न है कि हम इस पर विचार या ध्यान करें। क्या हम वास्तव में संसार को अपने चारों ओर देखते हैं? जब मैं और मेरी पत्नी पहली बार दक्षिण भारत में गए तो हम अपने खाली समय को समुद्र के किनारे बैठकर वहां पर सुंदरताओं को देखने में बिताते थे। वे दिन बहुत ही सुंदर थे। संसार के प्रत्येक व्यक्ति के सामने यहाँ पर बस जाने की इच्छा होती, एक से बढ़कर एक सुंदर स्थान। मैं इन सबको देखकर पत्नी से कहा करता था, परंतु हम वास्तव में उसे नहीं देख रहे हैं जैसा वह था। यह सब कुछ परमेश्वर के न्याय के अधीन है। ये सब कुछ खत्म हो जाएंगे। मेरे मित्र, ये सभी सांस्कृतिक केंद्र, ये बड़े विद्यालय, ये बड़े शहर, गगनचुंबी भवन जिसे हम प्रतिदिन देखते हैं, एक दिन सब खत्म हो जाएंगे। यह संभव नहीं लगता है और वैसा ही शिष्यों ने भी महसूस किया। यीशु आगे कहते हैं, यहाँ पर एक पत्थर पर भी पत्थर धरा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। यदि उसके पहले वक्तव्य ने उन्हें सदमे में डाल दिया था तो इसने उन्हें अवश्य मानसिक आघात पहुंचाया होगा। मेरे मित्र ने मुझे बताया कि कई वर्ष पूर्व जब वह यरूशलेम गया तो उसके मार्गदर्शक ने उसके ध्यान को यरूशलेम की विलाप करने वाली दीवार की ओर लगाया, जहां पर लोग दूर दूर से आकर रोते हैं और पत्थर कैसे घिसे पीटे हो गए हैं। निश्चित रूप से इसका कोई भी फायदा नहीं है, परंतु एक चीज आकर्षक लगी कि वो दीवार अलग अलग पत्थरों के मिश्रण से बनी थी। इतिहास हमें बताता है कि ये विलाप करने वाली दीवार के पत्थर अलग अलग स्थानों की इमारतों से लाए गए थे और अलग अलग समय काल में लाए गए थे। मंदिर का शिखर, जो स्पष्ट रूप से मंदिर के कोने का क्षेत्र था, कुछ समय पहले की खुदाई इसी चीज को प्रकट करती है। वहां पर सभी प्रकार के पत्थर अलग अलग समय के थे। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे मित्र, इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी पत्थर एक दूसरे के ऊपर धरा ना रहा। बनाने वालों को पत्थर लाने के लिए अलग अलग स्थानों में जाना था, क्योंकि 70 ईस्वी सन में रोमी सम्राट तीतुस ने उस शहर को वास्तव में नाश कर दिया था। यद्यपि यह हमारे लिए पूर्वजों की कहानी है, परंतु यह शिष्यों के लिए दिल दहलाने वाला प्रकाशन था। मुझे भरोसा है कि उन्होंने पहले ही बात कर ली थी। तब वे तीन प्रश्नों के साथ उसके पास आते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, जब वह जैतून पर्वत पर बैठा था तो उसके चेले एकांत में उसके पास आकर कहने लगे, हमें बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने का तथा इस युग के अंत का क्या चिन्ह होगा। ये बातें कब होगी, कब एक पत्थर के ऊपर पत्थर धरा ना रहेगा, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर पद 23 से 51 में मिलता है। और तीसरी बात, संसार के अंत का चिन्ह क्या होगा, अर्थात युग का अंत। इस प्रश्न का उत्तर हमें पद 9 से 22 में मिलता है। प्रभु यीशु इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने जा रहे हैं और हम उनके उत्तर को जैतून उपदेश कहते हैं, क्योंकि यह घटना जैतून पर्वत पर घटी। यीशु शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, ये बातें कब होंगी, कब एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी धरा ना रहेगा। हम मत्ती रचित सुसमाचार में इसका उत्तर नहीं पाते हैं, हम इसे लूका रचित सुसमाचार में पाते हैं और हम इसके खंड को मरकुस रचित सुसमाचार में भी पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में यह क्यों शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि मत्ती राज्य का सुसमाचार है, यह राजा को प्रस्तुत करता है। 70 ईस्वी सन में यरूशलेम के विनाश से इस युग का कुछ लेना देना है जिसमें हम रहते हैं, परंतु इसका दूरस्थ भविष्य से कोई लेना देना नहीं है जब राजा आता है तब। इसलिए मत्ती उस भाग को जैतून के उपदेश में शामिल नहीं करता है। तो आइए हम हमारे प्रभु के पहले प्रश्न के उत्तर को देखें, जैसे कि लूका की पुस्तक में हमें मिलता है। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 20 से 24 पद में हम पढ़ते हैं। लिखा है, परंतु जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तब जान लेना कि उसका उजाड़ जाना निकट है। तब वे जो यहूदा में हो पहाड़ियों पर भाग जाएं, जो नगर के भीतर हो वे बाहर निकल जाएं, और वे जो गांव में हैं नगर में ना लौटें, क्योंकि ये बदला लेने के दिन होंगे कि वे सब बातें जो लिखी गई है पूरी हो जाए। उन दिनों जो गर्भवती हो और दूध पिलाती हो उनके लिए हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश होगा और इस जाति पर प्रकोप होगा। वे तलवार से घात किए जाएंगे और सब देशों में बंदी बनाकर पहुंचाए जाएंगे, जब तक गैर यहूदियों का समय पूरा ना हो, यरूशलेम गैर यहूदियों के पैरों के नीचे रौंदा जाएगा। मित्रों, निसंदेह जिन्होंने प्रभु यीशु को यह कहते हुए सुना था वे 70 ईस्वी सन में वहां पर उपस्थित थे जब रोमी सैनिकों ने शहर को घेर लिया था और संसार से इसके सभी संपर्क अर्थात मार्ग काट दिए गए और घेराबंदी कर लिया, और अंत में उन्होंने दीवार में दरार बनाई और अंदर चले गए। रोमियों ने जो कुछ भी किया वह भयानक था, उन्होंने शहर को नाश कर दिया। यह इतिहास में सबसे बुरा विनाश था जो 6 शताब्दी पहले नबूकदनेज़र के द्वारा विनाश किया गया था, उससे भी यह बड़ा था। जब रोमियों ने 70 ईस्वी सन में यरूशलेम को विध्वंस्त किया तो जैतून के उपदेश का पहला भाग पूर्ण हो गया। अगले 2 प्रश्न जो शिष्यों द्वारा पूछे गए थे वे ये हैं, आपके आने का और इस संसार के अंत का चिन्ह क्या होगा। प्रभु यीशु शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर उनके कालक्रमिक और तार्किक क्रम में देने जा रहे हैं। वह उनके अंतिम प्रश्न का उत्तर पहले देंगे और उनके दूसरे प्रश्न का अंत में देंगे। सबसे पहले प्रभु यीशु संसार के अंत के विषय में चिन्ह की बात करते हैं, या उससे अधिक स्पष्ट रूप से कहते हैं, इस युग का अंत कैसे होगा। संसार का कभी भी अंत नहीं होगा। पुराना संसार खत्म हो जाएगा और नया संसार इस पृथ्वी पर उतारा जाएगा जो दृश्य में होगा, या आपके पुराने साइकिल को बदलकर नया लेने के समान ही है। आप नहीं कहते हैं कि यह मेरे लिए साइकिल के युग का अंत है, मेरे पास साइकिल नहीं है, आपके पास है, क्योंकि आपने अपना पुरानी साइकिल बदलकर या कार बदलकर नई ले ली है। और प्रभु पुराने संसार को नए संसार के साथ बदलने जा रहे हैं। संसार का कभी भी अंत नहीं होगा, परंतु इसके युग का अंत होगा, और वही शब्द है जिसका शिष्य प्रभु यीशु से प्रश्न पूछने के लिए उपयोग कर रहे हैं। मित्रों, इस जैतून उपदेश में जब मसीह अपने आने के विषय में कहते हैं तो वह पृथ्वी पर अपने आने का संकेत करते हैं कि वह अपना राज्य स्थापित करेंगे। कलीसिया इस दृश्य में है ही नहीं, और वास्तव में कलीसिया इस युग के अंत में हटा ली जाएगी। जब यह इसराइल राष्ट्र के लिए अंतिम दिन होंगे तब। वह महान सताओं के समय के बारे में बोल रहे हैं और वह इसे इस उपदेश में चिन्हित करते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर हमारा अध्ययन आज के लिए समाप्त होता है और हम अगले अध्ययन में इसके आगे के भाग को देखेंगे और उस पर विचार करेंगे। कृपया तब तक आप इस वचन पर अवश्य विचार करते रहें और प्रभु की निकटता में बने रहें। प्रभु आप सबको अपनी आशीष दे।
जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मतवाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मतवाले। बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुल घुल के मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले।